निहाल की आंखों में उसे हासिल करने का जुनून नजर आ रहा था। आनिया उसकी अब तक की बातों से सकते में थी। ज्यादातर बातें उसके सर के ऊपर से गुजर गई थी। वो हैरानी परेशान सी उसे देखे जा रही थी, पर जैसे ही उसने उसकी आखिरी बातें सुनी, आनिया की भौहें तन गईं। अन्वय को मारने की बात सुनकर उसको गुस्सा आ गया, पर वो कुछ कर पाती उससे पहले ही निहाल ने उसके लबों को अपने लबों से जकड़ लिया। वो छूटने के लिए छटपटाने लगी, उसे खुद से दूर धक्का देने लगी, पर निहाल की पकड़ मजबूत थी। उसने गुस्से में उसे चूमना शुरू किया था, पर अब वो बहकने लगा था। बहुत देर तक वो आन्या के लबों का रस चूसता रहा। आन्या की सांसें फूल गईं, ऐसा लगा जैसे प्राण निकल जाएंगे उसके। अगले ही पल निहाल ने उसे छोड़ दिया, पर आन्या खुद को संभाल पाती या कुछ समझ पाती, उसने उसे बेड पर धक्का दे दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। उसके इरादों को भांपते हुए आन्या का रोम रोम भय से कांप उठा। वो उसे खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए उसे छोड़ने के लिए कहती रही, पर निहाल पर उसकी किसी बात का असर ही नहीं हो रहा था। वो मदहोशी के आलम में उसके चेहरे को चूमे जा रहा था। आन्या का दिल बैठता जा रहा था। मन अन्वय को याद करने लगा और उसके मन की आवाज़ अन्वय तक पहुँच गई। वो और तेज गति से उसकी तरफ बढ़ने लगा, साथ में उसके साथी थे। वहीं उस महल में उस वक्त प्रताप काउंसिल के सदस्यों के साथ मौजूद थे। वे सभी आज ही अन्वय के महल पर हमला करने की योजना बना चुके थे। अन्वय का उनके खिलाफ जाना, उनके नियमों को मानने से इनकार करना, उन सब के लिए बहुत बड़ी समस्या थी। उसका बगावती व्यवहार उन्हें शंका में डाले हुए था कि आगे चलकर वो उनके लिए खतरा बन सकता है। उस पर काउंसिल अध्यक्ष प्रताप की इकलौती बेटी की शादी विक्रांत से हुई थी और अन्वय उनका सबसे बड़ा दुश्मन था। ये भी वजह थी कि वे सभी अब मिलकर अन्वय को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। शाश्वत उस वक्त उस महल में बने गुप्त तहखाने के सामने खड़े थे। लबों पर जहरीली मुस्कान फैली हुई थी। उन्होंने दरवाज़ा खोला और जैसे ही अंदर कदम रखा, उनकी निगाहें सामने घास पर लेटे हुए एक आदमी पर पड़ीं। वो बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। लग रहा था जैसे देह में प्राण ही न हो, पर सांसें चल रही थीं उसकी। किसी की आहट पाकर उस शख्स ने अपनी आंखें खोली और जैसे ही सामने से आते शाश्वत पर उसकी निगाहें पड़ी, उसकी आंखें गुस्से से नीली हो गईं। वो उन बेड़ियों से आज़ाद होने की कोशिश करने लगा, पर कुछ कर नहीं सका। शाश्वत उसके सामने आकर बैठ गए और उसकी बेबसी और तड़प देखकर शैतानी हंसी हंसते हुए बोले, कोशिश करना छोड़ दे, तू तब तक यहाँ से आज़ाद नहीं हो सकता जब तक मैं नहीं चाहता। जिन बेड़ियों में तू सालों से जकड़ा हुआ है, उन्होंने तेरी सारी शक्तियाँ सोख ली हैं। अब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तेरे वजह से मुझसे मेरा पद और मेरी मोहब्बत दोनों छिन गईं। इतना समझाया था मैंने तुझे कि अनामिका तेरे लिए ठीक नहीं, छोड़ दे उसे, पर तूने मेरी नहीं सुनी। तूने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। तभी मैंने यह निश्चय कर लिया था कि जैसे मैं अपनी मोहब्बत के लिए पल पल तड़पा हूँ, वैसे तुझे और अनामिका को भी तड़पना होगा। तभी तो तुझे मारा नहीं, बंदी बनाकर रखा, ताकि तुम दोनों तड़पो एक दूसरे के लिए, पर कभी मिल ना सको एक दूसरे से। तूने मुझसे मेरा पद छीना और देख मैंने तेरे साथ क्या किया। वहाँ का सम्राट होकर भी बरसों से मेरी कैद में है तू। मैं तो उसी वक्त तेरे क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लेता, पर तेरा वो अंश मेरे हाथ से निकल गया था। उसे ढूंढने में मुझे सालों लग गए, पर अब वो वापस लौट चुका है। तुझे ये जानकर बेहद खुशी होगी कि अब तक उसे वो लड़की नहीं मिली जिसमें उसकी आधी शक्तियाँ समाई हुई हैं। इसका मतलब समझता है, मैं और मेरा बेटा बड़ी आसानी से उसे अपने रास्ते से हटा लेंगे। उसके बाद तेरे क्षेत्र पर मेरा आधिपत्य होगा। वो सब जो तूने मुझसे छीना था, वो सब मैं वापस हासिल करने वाला हूँ। अब वक्त आ गया है तुझे आज़ाद करने का। तेरे सामने तेरे बेटे को मारूंगा और उस अनामिका के सामने तुझे खत्म करके उसे अपना बना लूंगा। शाश्वत उसे नफरत भरी निगाहों से घूर रहे थे। वहीं शिखर, मतलब अन्वय के पिता, उसे गुस्से से नीली आंखों से घूर रहे थे। उनके मुंह से उनके बेटे अन्वय का जिक्र सुनकर एक पल को उनके भाव कोमल हो गए। उन्होंने जन्म के बाद से ही उसे नहीं देखा था, उम्मीद भी छोड़ दी थी कि उसे कभी देख सकेंगे, पर आज एक उम्मीद नजर आई थी। लेकिन शाश्वत की योजना सुनकर अब उन्हें अपनी बेबसी पर गुस्सा आ रहा था। शाश्वत कुछ देर में आने का बोलकर वहां से निकल गए। दूसरी तरफ निहाल के कक्ष में निहाल अब आगे बढ़ने लगा था। उसने आन्या के कंधों को बेतहाशा चूमना शुरू किया तो आन्या का दिल डर से दहल उठा। वो लगातार उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती रही, पर निहाल का आज उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। आन्या का दिल अन्वय को पुकार रहा था। आखिर में आन्या से और बर्दाश्त नहीं हुआ। अन्वय के अलावा किसी और का छूना, उसके करीब आने की कोशिश करना उसे नागवार गुजरा। उसने हाथ चलाया, शायद कुछ मिल जाए, कि उसका हाथ जाकर साइड टेबल पर रखे लैंप से जा टकराया। उसकी जान में जान आई। किसी तरफ हाथ खिसकाते हुए उसने लैंप पकड़ा और निहाल के सर पर दे मारा। दर्द से निहाल की आह निकल गई। आनिया पर से पकड़ हटाते हुए उसने अपने सर को पकड़ लिया। मौके का फायदा उठाकर आनिया ने लैंप छोड़ा और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे खुद से दूर धक्का दे दिया। भागते में तो वो उस्ताद थी ही, जब तक निहाल संभल सका वो बेड पर से कूद गई और दरवाजा खोलकर बदहवासी बाहर भाग निकली। नई जगह थी, कहाँ जा रही थी कुछ नहीं जानती थी, बस भागे ही जा रही थी। वो बस कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकलना चाहती थी, अन्वय के पास पहुँचना चाहती थी। अभी उसे सिर्फ अन्वय ही नजर आ रहा था। वो बस भागे जा रही थी। उसकी सांसें उखड़ने लगी, कदम लड़खड़ाने लगे, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। गलियारों से भागते हुए और सीढ़ियों से उतरते हुए वो नीचे पहुंची तो सामने बड़ा सा गेट देखकर उसकी आंखों में चमक लौट आई। वो जल्दी से उसी दिशा में भागने को हुई कि एकाएक विक्रांत उसके सामने आ खड़ा हुआ और अपनी गुस्से से नीली आंखों से उसे ऐसे घूरने लगा जैसे आंखों से ही मार डालेगा। उसका भयानक चेहरा देखकर आनिया घबरा गई और उसके कदम ठिठक